शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब हम ओम शांति शब्द कहते हैं, उन्हीं भावनाओं से, कौन सी भावनाएं? ओम शांति का अर्थ देखो, आज संगठन कुमारियों का कितना बड़ा संगठन, और योग में बैठे मन एकाग्र रहा, सच सच बोलना, सच सच। फिर मैं पूछूंगी एकाग्रता का अर्थ, एकाग्र रहा, एकाग्रता किसको कहते हो? कोई भी ऊंट के बड़े आवाज से बताए, मेरे पास तो माइक है तो सबको सुनाई पड़ता है। एकाग्रता अर्थात एक के अंत में रहना। एक कौन? एक कौन? बाबा। और मैं कौन? मैं कौन? मेरा अंत क्या? बोलो। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली हूँ। ठीक है, ठीक है, ये बात समझी हुई है ना? तो मन का काम, बुद्धि का काम, और उनसे जो कर्म कर्त किया जाता है, फिर उसकी रिजल्ट मन बुद्धि संस्कार। ठीक है, ठीक है, समझा है इन बातों को? जिन्होंने अच्छे से समझा है हाथ उठाए। सभी उठाते हैं, सभी सेंटर्स पर जाते हैं। अच्छा, मन का काम क्या है? मन का काम क्या है? विचार करना। बुद्धि का काम क्या है? समझ में नहीं आया, एक बोले। अच्छा, और संस्कार? अभी हर एक बोलेगा तो सबका मिला हुआ आवाज तो नहीं समझ में आएगा। मन का काम है विचार करना, बुद्धि का काम है विचार करना। मन स्थिर, मन को एकाग्रता चाहिए। अगर मन चलता ही रहता है तो अनेक प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की ख्यालात, कभी अच्छी कभी बुरी, या जो कुछ सुना है उस पर विचार चलता रहेगा। मन को स्थिर रखने से कहा जाता है ना, मन को एकाग्र करना है, क्योंकि मन भटकता है संस्कारों के अनुसार, मन चलता ही रहता है। परंतु बाबा ने जो हम बच्चों को योग सिखाया है, योग माना, योग माना याद, किसकी? कहना बड़ा सहज, पूछो अपने आप से, योग में बैठे एक की, ایک باپ کی یاد رہی یا کچھ 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 سنکلپ آتے رہے. سچ سچ بولنا, بولو نہیں ہاتھ جو سمجھتے ہیں, بس ایک کی یاد میں پورا ٹائم استھر رہے وہ ہاتھ اٹھاؤ. تو اور کیا کیا دیکھا میں نے, تین چار کا ہاتھ اٹھا, اور کیا کیا سنکلپ چلتے رہے, کچھ بھی نہیں, نہ ایک کی یاد نہ کوئی سنکلپ, نہیں سننا. کیونکہ من بدھی سنسکار, یہ مجھے آتما کے سنسکار مانا, جو ہم کرم کرتے ہیں ان کے انکول ہمارے سنسکار بنتے ہیں. جس سنسکاروں کے انوسار من اپنا کام کرتا ہے اور بدھی سوچ سمجھ کے کام کرو, ایسے کہا جاتا ہے نا, بدھی سے کام لو, ایسے کہ من سے کام لو نہیں کہا جائے گا, بدھی سے کام لو. تو بدھی سوچ سمجھ کے پھر کہتی بولتی ہے, اس لیے من کی ایکاگرتا ضروری ہے. جو بدھی جو کچھ سنے سمجھے اس کو وچار کر سکے اور یتھارتھ کرم میں لا سکے. کرم سے ہمارا سنسکار بنتا ہے, اس لیے یوگ مانا ہمارا من استھر رہے, من کی ہلچل نہ ہو, من کی ایکاگرتا چاہیے. ارتھا اس لیے بابا کہتے ہیں ایک مجھ باپ کو یاد کرو اور کچھ نہیں. اور پھر بابا نے وستار بتایا ہے کہ جو کرم اندریوں سے کرم کرتے ہو, ارتھات اس ناٹک کے اندر سرشتی منچ پر ہم کرم کرتے ہیں, اس کے لیے بیچار چلتا ہے. تو بیچار کرنے والی کون, اس کو ہمیں اندر پکا کرنا ہے. تو من کے اندر یہ بات پکی یاد رکھنی ہے, میں کون ہوں, کون ہوں میں, میں شدھ آتما ہوں. سدا یاد رکھو میں شدھ آتما ہوں. ہم مانتے ہیں نا پرماتما کی سنتان ہے, یہ مانتے ہیں نا, تو پرماتما کی سنتان میں شدھ آتما ہوں. تو شدھ آتما کہنے سے جو بھی وستار کے سنکلپ ہے ان کو ہم سہج ہٹا سکیں گی, ان سے اپن کو دور رکھ سکیں گی. اگر کیول میں آتما ہوں تو آتما کیا ہے, آتما تو دکھائی تو نہیں پڑتی ہے, پر آتما کے اندر یہ من بدھی سنسکار. تو جب میں آتما پرماتما کی سنتان ہوں تو پرماتما تو شدھ ہے, میں ان کی سنتان بھی شدھ ہوں, اس لیے مجھے سدا شدھ سنکلپ میں رہنا ہے. اور شدھ سنکلپ میں رہ کر آج یا کل کی مرلی میں تھا نا, من کو شیتل اور مکھ کو میٹھا, یاد ہے, من کو شیتل مکھ کو میٹھا اور بدھی کو رحم دل. اگر یہ بات پکی یاد رکھو اور انہی شبدوں پر منن کرو, منن بھی ہم من سے کرتے ہیں منن, پر کس پر, جو یتھارتھ بات ہے. منن کر کے جیسے من بدھی سنسکار, وچار کرنا من جب شیتل مانا شانت ہے, और अनेक प्रकार के विचार उसमें नहीं है तो यथारथ सोच सकता है। इसलिए मन को सदा शीतल हलचल न होनी चाहिए और बुद्धि मन शीतल मुख मीठा, मुख से हमें मीठे बोल बोलने हैं और बुद्धि से रहम दिल भावनाएं। कोई भी हमसे मिले, कभी कोई की बात अच्छी नहीं लगती है, परंतु अगर हमें ये पक्का है मैं रहम दिल हूँ तो भले नहीं अच्छी बात लगेगी परंतु मुख से मीठे बोल से मैं अगर उसको बैठ के बात करेंगी समझाएंगी तो उसके पास जो भी बात होगी वो उसकी सहज रीति से मिट जाएंगी। इसलिए देखो मूल्यां हम सुनते हैं परंतु उन मूल्यों के महावाक्यों पर हम विचार करते रहें। धारणा हमारी सचमुच मूल्य सुन के हम खुश होते हैं, बाबा के महावाक्य सुन के हमें नॉलेज बहुत अभी मिल गई है। ये जो स्पष्ट नॉलेज है आत्मा परमात्मा, मन का काम क्या है, आत्मा का बुद्धि का काम क्या है और संस्कार कैसे बनता है, ये कोई सबको स्पष्ट नॉलेज नहीं है। बाबा ने हम बच्चों को ये नॉलेज दी है। वास्तव में मन को हमें शीतल रखना है, शांत, क्योंकि मन में ऑटोमेटिकली विचार चलेगा ना। हम जो भी काम करेंगे विचार के सिवा थोड़ी करेंगे, तो मन ऑटोमेटिक काम करता है, पर अगर वो शांत है तो वो यथारथ काम कर सकेगा। इसलिए मन को शीतल और बुद्धि को, मन बुद्धि संस्कार, संस्कार तो हमारे कर्मों का खाता बनता है। इसलिए मूल्य के अंदर आया था मन शीतल बुद्धि मन और फिर मुख, मुख मीठा और संस्कार, मन बुद्धि मन मुख मीठा और बुद्धि रहम दिल। क्योंकि नहीं तो अगर मन ऐसे ही चलता है, किसको भी देखा क्या, किसका अच्छा लगेगा किसका बुरा लगेगा किसका कैसा होगा, क्योंकि मन तो चलता ही रहता है ना। पर अगर मन शीतल है तो जास्ती चलेगा नहीं, भले देखता रहे पर चलेगा नहीं, ये क्या करता है, चलेगा नहीं। और अगर मन चंचल है, जिसको भी देखेगा कोई न कोई बात उसके बुद्धि में आती रहेगी। तो बुद्धि को इसलिए रहम दिल बनाना है कि हम सबसे व्यवहार स्नेह संपन्न करते रहें। इसलिए मुख से जो बात करे वो सदा मीठी बात करे। और जब हमारा मन शीतल है तो ऑटोमेटिकली मुख भी मीठा बोलेगा, क्योंकि मन के अंदर और कोई किचरा भरा हुआ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मुख मीठा ही बोलेगा जिससे भी मिलेगा। क्योंकि हमें स्मृति बाबा ने दिलाई है कि हम सब एक बाप के बच्चे हैं और मानते हैं सभी, ये बात मानते सभी है परंतु करते हैं। हम भी सब, चलो हम सब ने ज्ञान लिया है फिर भी हम ऐसे करते हैं, पूछो हर एक अपने आप से, इसको देखा उसको देखा तो कोई ना कोई बात जिसके कांटेक्ट में रहते हैं आ जाती है ना बुद्धि में। इसलिए जब हमें बाप ने आत्मा की पूरी नॉलेज दी है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा में समाये हुए हैं, और मन संकल्प शक्ति को कहा जाता है। अगर मन मेरा शीतल है तो संकल्प शक्ति चलती रहे, ये देखा वो देखा उसकी आवश्यकता नहीं। और जो कुछ हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य, अगर उसको रिपीट करते हैं तो अगर हमारे आवाज में मिठास प्रेम है, मिठास से बोलेंगे, कोई भी सुनेगा तो उसको अच्छा लगेगा। इसलिए बुद्धि रहम दिल, अच्छा कोई मेरे से बुरा व्यवहार करता है, पर हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, बाप हमारा रहम दिल है, परमात्मा तो रहम दिल है ना। अगर उसके आगे हम प्रेम से बैठ के प्रार्थना करते हैं तो कुछ न कुछ अंदर में शांति देता है ना। जब कोई दुख होता है या नहीं, जब प्रेम से याद करते हैं दुखी होकर, तो मन को शांति मिलती है। इसलिए ऐसी सहज सहज बातें, नॉलेज बाबा ने हमें बड़ी विस्तार से दी है, लेकिन विस्तार को हम किस प्रकार अपने अंदर सार रूप में समाएं, जो सचमुच हम सदा शांत रहें। शांत माना ऐसे नहीं कि कोई मेरा संकल्प नहीं चलेगा, मैं कोई बात पर सोचेंगी नहीं, परंतु शुद्ध संकल्प। इसलिए कहा गया मन को शीतल, क्योंकि कोई कुछ बोलता है मुझे फौरन गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मन को अच्छा नहीं लगता है। अच्छा बुरा जल्दी मन को लगता है, बुद्धि सोचती है चलो इसने बोला मुझे इसका क्या जवाब देना है। अगर अच्छा नहीं है तो हम अपने को बुरा क्यों बनाएं? हम बुरा बोलेंगे तो बुरा मेरा संस्कार बन गया, उससे वो मेरा बुरा संस्कार के खाते में आएगा। लेकिन अगर हम अपने को पहचान हमें इसलिए मिली है कि हम आत्मा हैं। आत्मा की ये तीन क्वालिटीज जिसके आधार से आत्मा शरीर से काम कराती है, तो उन क्वालिटीज को मैं आत्मा शरीर से काम में लाने वाली हूँ, तो जो यथारत उनका ऐसा रूप मेरा हो, जो मन को शीतल रखूं, कोई भी कुछ बोलता है तो अगर मेरा मन शीतल है, शीतल मन शांत, तो जो बोलेंगे वो हम उसको यथारथ रीति से सोचेंगे, और फिर बोलेंगे तो मीठे शब्दों में बोलें, तब फिर बुद्धि रह दिल किसको भी कोई भी बात होगी, जब ये सोच के अच्छी रीत से किसको बोलेंगे तो रहम भावना से, कोई की भी समझो बात अच्छी नहीं है या हम समझते हैं इसको अपने में इस बात का परिवर्तन करना है, तो रहम भावना से, जब रहम भावना से बोलेंगे तो जरूर प्रेम से बोलेंगे ना। अच्छा नहीं लगता है अगर हमें अंदर में ऐसा आ गया तो हम गुस्से से बोलेंगे, पर चलो अच्छा नहीं बोला इसको हम अच्छी बात बताएं, माना ये इस बात को रियलाइज करे, तो मैं उसको प्यार से मीठे शब्दों में समझाएंगी तो उसके मन को लगेगा, मेरा प्यार से सुनेंगे। इसलिए मुरली में मैं समझती हूँ कल की थी मुरली या उससे पहले की थी, उसमें ये आया था मन शीतल मुख मीठा और बुद्धि रहम दिल। जब हम योग में बैठते हैं, अगर मन हमारा शीतल है तो योग हमारा एकाग्रता पूर्वक, फिर हमारे अंदर कोई संकल्प इधर उधर के चलेंगे नहीं, नहीं तो कोई न कोई बात या। इसलिए कहते हैं ना, योग में बैठते हैं संकल्प चलता रहता है। बताओ योग कैसा लगाएं, है ना, कहीं पूछते हैं ना योग कैसा लगाएं, वो तो बाबा ने बताया है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हम कहते केवल आत्मा नहीं याद रखो, पर मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब शुद्ध आत्मा याद करो तो ऑटोमेटिकली अंदर में रहम भावना आ जाती है। शुद्धता में रहम तो है ही है, तो हम जो भी बात करेंगे एक दो से उन्हीं भावनाओं से, ये भी आत्मा है, हम एक बाप के बच्चे, चलो इसके संस्कारों के अनुसार, पूर्व कर्मों के अनुसार, चलो इसने ऐसा कर्म किया, पर उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करूं। जब मुझे पहचान है तो मेरा काम है उनसे स्नेह से, यानी रहम दिल होकर मैं उससे बात करूं, फिर उसको हम बता भी सकते हैं, देखो इन बोल बोलने से कोई फायदा नहीं है, इसमें कर्म का खाता मेरा बनेगा, उसका नहीं, उसका अपना कर्म का खाता, पर मेरा कर्म का खाता बनेगा तो उसका दूसरे जन्म में मुझे ही भोगना पड़ेगा। तो अनेक जन्मों का हमारा अंत का जन्म है, और अंत के बाद फिर आद आने वाली है। आद में क्या है, सृष्टि ड्रामा की आद क्या है, सृष्टि चक्र की आद क्या है, सतयुग, सतोप्रधान युग। सतोप्रधान में कैसे होंगे मनुष्य, उसको कहा जाता है सतयुग में देवताओं का निवास था, पूजा देवताओं की होती है, तो बाबा हमें अभी देवता बना रहे हैं। देवता माना जिसके अंदर दिव्यता है, तो दिव्यता कौन सी, जो कुछ भी हम देखें, जो कुछ भी सुने, चलो कोई कैसा भी है, तो समझ है ना मुझे, ये इसका स्वभाव है, इसने बोला, मैं इनके स्वभाव के वश हो करके बोलूं तो मेरी शक्ति क्या रही, मेरी शक्ति, मैं आत्मा हूँ, मेरी शक्ति के अंदर, माना आत्मा शुद्ध है, शुद्ध के अंदर स्नेह और रहम दिल होता है। जिसको भी देखो, जब एक बाप के बच्चे हैं, तो हम आपस में स्नेह संपन्न व्यवहार करें और युक्ति युक्त बोल बोले, हमारी दृष्टि ऐसी रहे, हम सब एक बाप के बच्चे, आपस में भाई और बहन। क्यों कभी सृष्टि पर पाठ बजा रहे हैं, तो पाठ बजाने में भले अलग अलग है, लेकिन वास्तविकता अभी हमें पता है, तो हमारा व्यवहार इस ज्ञान के आधार से, जो वास्तविकता हमें मालूम है, उनके अनुकूल करना है, तब ही हम सतयुगी सृष्टि में देवता स्वरूप से, उन दैवी संस्कारों से फिर जन्म ले सकेंगे। अगर हमारे वैसे ही कर्म रहे तो क्या होगा, अंत में क्या होगा, उनकी सजाएं खाएंगे, खाएंगी आत्मा सदा, शरीर तो नहीं होगा पर उस समय दिखाएंगा शरीर, इस शरीर में ये किया इसलिए सजा का, उस शरीर से सजा खाएंगे। और सजाएं खाई तो कैसा जन्म मिलेगा, इसलिए अभी ये सृष्टि का ड्रामा का अंत का युग है, इसके बाद आदि सतयुग। अगर हम मानते हैं हम परमात्मा की संतान है तो परमात्मा ने पहले नई सृष्टि रची है, इसलिए बाप अभी गुप्त वेश में हमें फिर से पहचान दे रही है, दे दी है, जो हम फिर आपस में मिलकर उन्हीं बातों को वर्णन करके एक दो को सावधान मना, एक दो को जो बातें बाप ने सुनाई है सुना करके, और फिर एक दो के साथ से जो बाप ने सिखाया है उन शिक्षाओं को समझकर स्वयं के अंदर वह रहम दिली सर्व के प्रति। देखो बाप के पास, बाबा के पास कभी कोई भूल करके आता था ना, और आकर आप ही बताता था सकार बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे ये तुम जो किया ना उसको भूल जाओ, यहाँ कहेगा फिर क्लास में अपनी भूल बता देना, तो क्लास में सबके आगे फिर हम वो जो करता था उस वो भूल बताता था, तो बताने से थोड़ी तो ख्याल होगा ना फिर आगे के लिए उससे वो भूल होंगी नहीं। अभी तो ये सब विधियां आप लोगों से नहीं चलती है, जिस कारण जल्दी स्वभाव बदलता है या नहीं वो अपने आप से पूछना। अगर हम नॉलेज लेकर के उसको उसी रीति मनन करें तो हमारा स्वभाव नेचुरल बदल जाएगा, अर्थात हमारा सर्व के प्रति स्नेह भाव बना रहेगा, और स्नेह से हमारे बोल भी ऐसे ही निकलेंगे, जिस कारण ना हमें किससे दुख होगा ना हमको कोई दुख देगा, तो सदा सुखी और सर्व को हमारे से सदा सुख ही मिलता रहे, जबकि हम एक बाप के बच्चे हैं आपस में सब। अभी तो सब बहने बैठी है तो कहेंगे क्या आत्मा के संबंध से हम कहते हैं भाई भाई है, क्योंकि सब एक बाप के बच्चे हम आपस में भाई भाई। शुरू शुरू में हम आत्मा आत्मा करके बात करते थे, क्योंकि कट्ठे रहते थे किचन में, कट्ठे कट्ठे काम करते थे, बात करते थे तो हे आत्मा समझो समझो रोटी पकाते हैं, तो फिर कोई जल्दी इधर उधर देखता है तो अटेंशन कहता है हे आत्मा ध्यान दो, ऐसे कह के बात करते थे, जिस कारण हमें ये बातें सहज पक्की होती गई। अभी तो आप लोग जल्दी जल्दी व्यवहार में भी रहते हो, नौकरी भी करते हो, ज्ञान भी सुनते हो और सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए अंदर ही अंदर जो हम बाबा की बातें सुनते हैं उसको मनन करें। जो मुरली रोज सुनते हो रिपीट करते हो, पूछो अपने आप से कितना बार मुरली पढ़ते हो, तो ये तो हर एक की अपनी धारणा है, इसलिए थोड़ा इन बातों पर ध्यान दे के मन को सदा शीतल रखो, मुख को सदा मीठा बोल बोलना सिखा दो, और बुद्धि को रहम दिल अर्थात स्नेही बना दो। ओम।
ओम शांति। इससे पूर्व क्लास में आदरणीय सरला बेन ने यही बात कही थी कि इन दादियों ने आत्मा की चटनी बना दी है। लगता है ना क्लास में आत्मा की चटनी हो गई हो। आत्मा दृष्टि, आत्मिक शब्द, आत्मिक भाव, आत्मा का निश्चय, आत्मा की प्रैक्टिस, आत्मा की स्थिति इन दादियों ने ऐसे प्रैक्टिस में लाई ताकि आज इतने लंबे योगी जीवन के बाद भी कहीं क्वेश्चन नहीं
है। 12 बजे से लेकर दिवाली के दिनों में, दिवाली आएंगी, दिवाली के दिन रात को 12 बजे से लेकर सुबह को 5 बजे तक योग में बैठते थे। बैठ सकेंगे आप?
आपको ठीक कराओगे तो बैठेंगे।
कोई नहीं बैठेगा।
बैठेंगे दादी।
और हम सप्ताह सप्ताह योग में रहते थे, माना योग में रहते थे, माना एक आठ सप्ताह 8 दिन अलग एक कमरा, उसमें जितनी भी बहनें होंगी जो थोड़ी, वो उनको गद्दी देंगे, चार चार पांच पांच घंटा एक साथ बैठे रहेंगे। बाबा आएगा, बस खाली नैन ऐसा करके बाबा से मिलेंगे। वो मजा आता था। और जब बट्टी पूरी करके निकलते थे तो बस जैसे कोई फरिश्ते आए है और वो मिलते रहते हैं, ऐसे हम लोग चलते।
बहुत 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 धन्यवाद दादी जी। शुरुआत में आपने मन की गति को समझाया और उसके बाद यज्ञ के अपने अनुभवों से हम सबको ये प्रेरणा दी कि आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति, आत्मिक भाव का फाउंडेशन कैसे पक्का किया जाए। दादी जी की तरफ से आप सबको एक निमंत्रण दे रही हूँ, बाबा के यज्ञ को जैसे सेवाएं बढ़ती जाती है, यज्ञ की सेवाधारी टीचर्स की भी बहुत आवश्यकता रहती है। 9 सितंबर से 30 सितंबर तक यहाँ शांतिवन में जिन बहनों को सेवा में समर्पित होना है, अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी बनाना है, उन बहनों की विशेष ट्रेनिंग रखी गई है। आप अपने सेवा केंद्र पर जाकर सेंटर इंचार्ज बहन की स्वीकृति से सेवा केंद्र से आपका फॉर्म और उसकी जो भी डिटेल्स आवश्यकता है वो सब फिलअप करके भेजेंगे और आप वो ट्रेनिंग में आ सकते हैं। और मेरा मानना है हमें हमारे जीवन को सफल करना ही चाहिए, जैसे इन दादियों ने किया। जैसे सरला बेन ने बताया था, दादियों के पास कोई रोल मॉडल नहीं था और हमारे पास ये दादियां और वरिष्ठ बहनें रोल मॉडल के रूप में हैं। एक सूचना है छोटी सी, कल डाइनिंग में सुबह 8 से 9 कल विशेष भोग भी है। दिल्ली जोन एवं इंदौर कमला बहन का ग्रुप परोसने की सेवा में जाएगा और टॉली किचन में सुबह 5:30 बजे पंजाब की कुमारिया सेवा में पहुंचेगी। ठीक है, चलो 2 मिनट बाबा को याद कर ले, फिर 9:45 बजे देखो आज एक लॉटरी और मिली है। रात का क्लास किसका है? शारदा बहन का है ना, तो वो हमें मिस नहीं करना है। इसलिए ऐसा नहीं है सरला बहन आने के बाद सोचो कितने सारे आए थे, कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना बार आप सबको शांतिवन में। इन सबको छोड़ो, आज से अपनी वो अवस्था और मानसिकता बनाओ ताकि कल अमृत वेले से रात तक मम्मा दिवस की तपस्या का अनुभव हो। इसलिए रात का सब्जेक्ट भी ऐसा है कि रूहानियत ही दिव्य दर्शनीय मूर्त बनने का आधार है। तो चलो जल्दी जाके अब देखेंगे कौन इन टाइम आ रहा है ना, कन्याएं माना पुरुष कि माताओं की तरह लंगड़ाते लंगड़ाते जाना है ना, तो चलो बाबा के पास दो मिनट।
चमन हमारा।